अच्छा, तो सब लोगों ने वो पीडीएफ फाइल ओपन की है, मैंने अभी भेजी है जस्ट 5-10 मिनट्स बैक। मानस, आपकी वॉइस बहुत ही कम आ रही है, पता नहीं है आप दूर बैठे हो क्या वो फोन से? इट्स वेरी फीबल, आई डोंट नो, इट्स ओनली मी और एवरीवन एल्स, बट समीर रिजुल, आपने वो फाइल ओपन कर ली है? ओके, तो अनुभव जी ने क्या कहा है कि यू नो इस फाइल में पेज नंबर 324, अब बुक का देखोगे पेज नंबर 324, PDF would be 9, I guess. जो जीव पुण्य पाप के भाव से वहां वो वाला पेज 324 सब लोगों को मिल गया?
PDF 9 थाई छे।
हाँ बराबर, पीडीएफ 9 बुक पेज नंबर 324। समीर रिजुल मानस, लेट मी नो वंस यू आर इन दैट पेज।
वेयर देयर?
ओके, तो इसमें क्या करना है, अनुभव जी ने बताया कि समीर रिजुल मानस आप तीनों एक एक पैराग्राफ पढ़ोगे एंड यू कैन डिसाइड हूवर वांट्स टू गो फर्स्ट। सो यू नो इस पेज में आप देखोगे देर आर टोटली 1-3 पैराग्राफ एंड द फोर्थ पैराग्राफ दैट गोज टू पेज 325। तो क्या करना है, इसमें पहले एक पैराग्राफ लेना है, उसके बाद उस पैराग्राफ में आपको क्या समझ में आया है वो आपको एक्सप्लेन करना है, और आपके एक्सप्लेन करने के बाद बाकी सभी लोग आके अपने अपने विचार रखेंगे कि उनको क्या समझ में आया इस पैराग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल, इफ पिनो फर्स्ट पैराग्राफ इज बीइंग टेकन बाय समीर, देन समीर यू विल रीड दिस फर्स्ट पैराग्राफ और उसके बाद आप सबको बताओगे कि आपको इस पैराग्राफ में क्या समझ में आया है, और फिर बाकी जो भी है पिनो रिजुल मानस और बड़े लोगों में से जो भी मतलब अपने विचार रखना चाहे तो वो इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि उनको ये क्या समझ में आया है। तो ये आके अनुभव जी ने बताया आज हमको करना है, ये आके बेसिकली दिस कवर्स पिनो गुरुदेव श्री प्रवचन and also it covers you know what Anubhav ji took last time and you know hum log kar rahe the bahiratma antaratma aur parmatma, to usme kaise questions uthte hai aur kaise you know gurudev shri ne unka you know anushan kiya hai, to wo is you know page mein aata hai 324 or 225 page mein। theek hai, sabko samajh mein aa gaya na?
हाँ जी।
ओके, तो कौन पहले शुरू करेगा, समीर रिजुल मानस?
मैं शुरू कर सकता।
ठीक है समीर, तो आप स्टार्ट करो फर्स्ट पैराग्राफ, और फिर उसके बाद आप अपने विचार रखना जो आपको समझ में आता है।
जो जीव पुण्य पाप के भाव से धर्म माने क्योंकि स्वभाव शुद्ध है, इसने अशुद्ध से धर्म माना, और जड़ को मेरा द्रव्य माने तो द्रव्य और भाव दोनों की भूल है। ऐसा जो मिथ्या दृष्टि जीव बहिरात्मा भय त्याग में वर्तता होवे, समझ में आया? और कदाचित पंच महाव्रत का विकल्प वर्तता हो, परंतु वह बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, बंध मार्ग में वर्तता है। सम्यक दृष्टि ऐसे ऐसा मानता है। Can I say in English?
What yeah, I understand? Samir, अब आप बताओ आपको क्या समझ में आया इस paragraph में, क्या बात बताई है?
मैं English में बोल सकता हूँ?
हाँ बोलिए, English में भी बोल सकते हैं आप, हिंदी में बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा सबको, बाकी लोगों को भी अच्छे समझ में आएगा, बट ठीक है आप इंग्लिश में, आपको समझ में आए तो इंग्लिश में बोलिए, नो प्रॉब्लम।
ओके, जो अगर जीव को लगता है कि पाप और पुण्य अच्छा और बुरा होता है और इसे लेकर धर्म मानता है, तो वे मिथ्या दृष्टि और बहिरात्मा है और भारों की चीजें को देखता है। और वो जड़ को देखकर मानता है कि ये जीव को अफेक्ट करता है। और और बस यही समझ में आया।
ठीक है, रिजुल मानस आप अपने विचार रखेंगे? हेलो रिजुल मानस,
दैट वाज आल्सो व्हाट आई अंडरस्टूड, आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स।
ओके, सो यू आल्सो अंडरस्टूड द सेम वे व्हाट समीर एक्सप्लेन्ड?
या आई अंडरस्टूड लाइक द सेम थिंग।
ओके मानस, आप
जो जो मतलब अपने आप को जड़ से जानता है, दर्शन कर रहा है और दोनों द्रव्य और भाव से दूर कर रहा है।
मानस आपकी वॉइस बहुत ही लो आ रही है, आई कुडंट फॉलो एनीथिंग।
अब आ रही है आवाज?
हाँ अब बराबर है, अब बराबर है, अब बोलिए।
मैं कह रहा था कि मैं कह रहा था कि मुझे समझ आया कि जो जीव को लगता है कि मैं शरीर हूँ और बाहर की चीजें से एसोसिएट करता है, वो मिथ्या दर्शन कर रहा है, और दोनों द्रव्य कर्म और भाव कर्म को अट्रैक्ट कर रहा है।
अच्छा, बड़े लोगों में से कोई बोलेंगे, पानो आंटी और कोई भी है तो अपने विचार रखेंगे कि क्या है।
यहाँ स्वभाव शुद्ध है और जो पुण्य पाप के भाव होते हैं वो अशुद्ध है, तो उसको वो रागादि भाव है तो उसको गुरुदेव कई दफा जड़ भी बोलते हैं, तो वो रागादि भाव मेरे है, वो हम अगर वैसा समझे कि ये मेरे है तो के तो तू जड़ है, वैसा भी कई दफा गुरुदेव बोलते होते हैं, तो ऐसा तो उसको जो रागादि भाव मेरे है और वो मैं हूँ ऐसा जो माने वो मिथ्या दृष्टि है और वो बहिरात्मा है। और फिर जीव बहिरात्मा बाय और जो बाह्य त्याग में वर्तता हुआ जो जो बाह्य त्याग में वर्तता हुआ के कदाचित पंच महाव्रत के व्रत धारण करे ओ या कोई चीजों को त्याग करे के मैंने ये खाने का त्याग किया के कुछ चीजों का त्याग किया तो वो भी बहिरात्मा ही है, क्योंकि तू किसी का त्याग कर नहीं सकता है और उसको तू बाह्य चीजों को अपना मानता है, तो वो मेरा द्रव्य है उसको वैसा मानता है तो वो भी बहिरात्मा है पर वस्तु को अपना मानता है। और यहाँ लास्ट लाइन में बंद मार्ग में वर्तता है तो रागादि भाव को वो आश्रव भाव को अपना मानता है तो वो बंद होता है तो उसको के बंद मार्ग में वर्तता है।
हाँ मतलब मेरे भी समझ में यही आ रहा है कि यहाँ आके जो बात ली है तो गुरुदेव श्री पिनो ने ऐसा ही बताया है कि जो जो मिथ्या दृष्टि जीव अपना राग जो भी अपने भाव होते हैं विकारी भाव उसको अपना मानता है और सॉरी माई माई पिनो सिस्टम हैज सम इश्यूज तो एक सेकेंड। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि पिनो इसमें यही पिनो लिया है कि जो भी पुण्य पाप के भाव होते हैं राइट तो उसको आके वो धर्म मानता है तो वो मिथ्या दृष्टि जीव है और वो अपने पिनो उसका मतलब बंध निरंतर पिनो कंटिन्यूसली रहता ही है क्योंकि उसने आके पिनो वो विकारी भाव विकल्प वगैरह है उसको अपना माना और उसमें राग द्वेष किया तो उसमें उसका बंध मार कंटिन्यूसली होता ही रहता है। और कोई बड़े लोगों में से और कोई है? ठीक है, तो और किसी का विचार नहीं है तो फिर हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ ले सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन? रिजुल, आप लोगे?
हाँ जी। सम्यक दृष्टि गृहस्थाश्रम निवृत्त रहित हो बाह्य त्याग न हो अंदर आसक्ति का चारित्र दोष रूप तीन कषाय भी का भाव हो तो भी चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि पांचवे वाला छठवे वाला व्यवहार समकित में उस मोक्ष मार्गी है ऐसे स्वीकार करता है। समझ में आया?
यस रिजुल,
इट्स लाइक अगर क्वेश्चन सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में है और तीन कषाय का भाव है I don't know.
नो प्रॉब्लम रिजुल। समीर, मानस, आप बताएंगे आपको क्या समझ में आया?
I think it says के क्योंकि जो छोटे गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो अविरति होते हैं, मतलब के उनके उनको व्रत नहीं ले वो व्रत नहीं लेते, और उनके आगे वाले भी जो पांचवे और छठे गुण स्थान के समय दृष्टि है जो व्रत लेते हैं वो तभी भी छोटे गुण स्थानों को मोक्ष मार्गी मानते हैं।
बराबर है, मानस ने बोला। ओनली वन मोर पॉइंट यहाँ एक है कि चौथा गुणस्थान वाला होता है उसको तीन कषाय चौकड़ी अभी बाकी है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन उसको बाकी है, तो भी उसके तो उसके व्रत नहीं है तो भी उसको पांचवे छठे वाले उसको मोक्ष मार्गी मानते हैं। सचिन भाई समझो आपको
बोलो।
बस मैंने तो बोला कि मानस ने बोला वो ही मैंने बोला कि यहाँ चौथे गुण स्थान का ना तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव है उसको, फिर भी उसके व्रत नहीं है, फिर भी वो मोक्ष मार्ग में है। वैसा पांचवे छठे गुण स्थान वाले जो जिन्होंने व्रत धारण किए हैं वो उसे ऐसा नहीं समझते कि इसने व्रत नहीं धारण किए तो वो मोक्ष मार्ग में नहीं है।
राइट, तो यहाँ मेन मतलब सम्यक दृष्टि है इसके लिए वो मोक्ष मार्गी है, राइट?
हाँ, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे के छठवे वाले वन जंगल में रहे, मगर सारे मोक्ष मार्ग में ही है। सम्यक दृष्टि गृहस्थ आश्रम में है, वो भी मोक्ष मार्ग में ही है।
यहाँ के एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो पांचवे छठे गुणस्थान में होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि वो चौथे गुणस्थान वाले को मोक्ष मार्गी है ऐसा ही स्वीकार करते हैं चाहे वो व्रत भी ना ले, तो यहाँ वो उनको पता कैसे चलता है कि ये आके मतलब यू नो ये सम्यक दृष्टि जीव है, उनको पता चल जाता है बात है, या फिर सिर्फ ये मानने की बात है कि पांचवे वाले छठे वाले जो भी सम्यक दृष्टि जीव है वो ऐसा मानते हैं कि चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव भी मतलब मोक्ष मार्गी है?
वो तो वैसा बोलते कि एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को पहचान लेता है, क्योंकि वैसे तो चौथे गुण स्थान वाला तो सारा कुछ जैसे हम जो कार्य करते हैं वैसे करता है, तो ऊपर से तो हमें पता भी नहीं लगता ना कि ये सम्यक दृष्टि है। और उसके व्रत वगैरह तो नहीं है तो पता हमें वैसे कई दफा पता भी ना लगे कि ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं है।
बराबर नहीं, पर इसमें यहाँ जो आ रहे हैं ना जो पांचवे वाले छठे वाले सम्यक दृष्टि जीव है वो आके इनको आके मोक्ष मार्ग ही मानता है, राइट?
हाँ, तो वो ऐसे क्योंकि ज्ञानी ज्ञानी को पहचान लेते हैं।
सचिन भाई यहाँ पे दो बातें हैं।
हाँ जी,
एक बात ये है कि ज्ञानी ज्ञानी को पहचान लेते हैं, पर यहाँ पे खास व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, यहाँ भूमिका की बात है कि अगर कोई छठे गुणस्थान में है या पांचवे गुणस्थान में है और अगर कोई छोटे चौथे गुणस्थान वाला ज्ञानी होगा तो वो उसको भी मोक्ष मार्ग ही मानेंगे। यहाँ तो व्यक्ति विशेष की बात नहीं है कि हाँ इसको आइडेंटिफाई किया और उसको मानेंगे, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग में होता है उसको अपने अलावा किसी और का वो नहीं होता कि भाई वो है कि नहीं है, पर यहाँ भूमिका के अनुसार ये कह रहे हैं कि छठे गुणस्थान या पांचवे गुणस्थान वाला जो है वो छठे वाला पांचवे को भी मोक्ष मार्ग ही मानता है, पांचवे वाला चौथे को भी मोक्ष मार्ग ही मानता है, छठा वाला चौथे को भी मोक्ष मानता है, ऐसे भूमिका के अनुसार बात चल रही है।
राइट, तो भूमिका के हिसाब से मतलब जो भी छठे वाला छठे स्थान में है तो वो मतलब वो ऐसा मानते हैं ना कि पांचवे में जो है चौथे में जो भी जीव है राइट तो आके मोक्ष मार्ग ही है, राइट?
भूमिका के अनुसार, यस। अब उसमें ये नहीं है कि वो ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि भाई ये चौथे वाले हैं और ये पांचवे वाले हैं, दैट इज नन ऑफ देयर कंसर्न।
करेक्ट,
व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती मोक्ष मार्ग के अंदर।
मानस, अभी आप नेक्स्ट पैराग्राफ ले लोगे?
हाँ जी। चौथे गुणस्थान वाला शिव मार्गी व्यवहार समकित में उस बाहरा आत्मा को बंद मार्गी स्वीकार करता है और सम्यक दृष्टि जीव को मोक्ष मार्गी है, ऐसा व्यवहार समकित में स्वीकार करता है क्योंकि परद्रव्य है ना। और पांचवे गुणस्थान वाला धर्मात्मा दो कषाय के अभाव वाले को मध्यम अंतरात्मा के रूप में मोक्ष मार्ग रूप में समकिति उसे स्वीकार करता है। छठवें गुण स्थान वाले भावलिंगी मुनि जिन्हें आत्म श्रद्धा ज्ञान और शांति प्रगति है परंतु अभी शुभ उपयोग है, ऐसे मुनि सामने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले दो कषाय के अभाव वाले श्रावक को व्यवहार संकेत में मध्यम अंतरात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं और गृहस्थ आश्रम में अविरत सम्यक दृष्टि हो वह भी मोक्ष मार्गी है। ऐसा छठवें गुण स्थान वाले शुभ उपयोग में व्यवहार संकेत में वह भी मोक्ष मार्गी है, ऐसा स्वीकार करते हैं। छठवे वाला चौथे वाले को व्यवहार से व्यवहार संकेत वे विषय में वह निश्चय मोक्ष मार्ग में है, ऐसा स्वीकार करता है। समझ में आया? पुस्तक ली है या नहीं? I think के बोला है कि जो पांचवे गुण स्थान वाले समय दृष्टि होते हैं उनके लिए तो छठे गुण स्थान वाले को जो उनसे नीचे होते हैं उनको भैरात्मा मानते हैं और जो पांचवे गुण स्थान वाले आते हैं उनको उनको व्रति समय दर्शन मानते हैं और जो पांचवे गुण स्थान व्रति समय दृष्टि मानते हैं और जो पांचवे गुण स्थान में समय दृष्टि होते हैं उनके लिए उनके जो छोटे गुण स्थान में होते हैं जिनके पास अभी भी तीन कषाय है वो उनके वो जगन्य और अविरति समय दृष्टि माने जाते हैं और पांचवे गुण स्थान में दो कषाय तो वो मध्यम समय दृष्टि हुए और फिर छठवें गुण स्थान में खाली एक कषाय बाकी रहता है तो उनके लिए पांचवें गुण स्थान मध्यम हुआ और छठा गुण स्थान समय दृष्टि उत्तम समय दृष्टि हुए। मुझे इतना समझ रहा है।
अच्छा यहाँ मतलब यहाँ वही मतलब वो भूमिका की बात हो रही है, राइट, कि चौथे गुणस्थान वाले जो मोक्ष मार्गी है वो आके पिनो बाहिर आत्मा को बंध मार्ग जैसा स्वीकार करता है, और सम्यक दृष्टि जीव है वो मोक्ष मार्गी है ऐसा स्वीकार करता है। भानु आंटी,
हाँ, मानस ने जो बोला वो बराबर था, क्योंकि यहाँ तो बस ऐसे तो वो क्या है कि मध्यम अंतरात्मा, जगन्य अंतरात्मा, जगन्य लिखा नहीं है, परंतु वो अनुभव जी ने बोला था ना कि जो तो चौथे गुण स्थान वाला है वो जगन्य अंतरात्मा है, और यहाँ तो लिखा है कि पांचवें गुण स्थान वाला धर्मात्मा दो कषाय के अभाव वाले को मध्यम अंतरात्मा के रूप में वो देखते हैं, और भावलिंगी मुनि दो कषाय के अभाव वाले श्रावक को व्यवहार संकेत में मध्यम अंतरात्मा, जो वो पांचवें गुण स्थान वाला ही हुआ ना, दो कषाय चौकड़ी का अभाव वाले। और यहाँ फिर वो छठवें गुण स्थान का नहीं लिखा, मगर मानस ने बोला कि उत्तम जगन्य मध्यम और उत्तम अंतरात्मा में भी आगे शायद आएगा, और व्यवहार क्यों बोला कि यहाँ पर द्रव्य, क्योंकि वो दूसरे का हम देखते तो इसलिए, क्योंकि पर द्रव्य है ना, गुरुदेव ने यहाँ बोला थर्ड लाइन में, क्योंकि पर द्रव्य है ना ऐसा, तो इसलिए व्यवहार संकेत में स्वीकार करते कि व्यवहार से बोलते कि ये पांचवा गुण स्थान वाला कि छठा गुण स्थान वाला कि ये मध्यम अंतरात्मा।
और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? आई थिंक वी कैन कंटिन्यू देन।
और गुरुदेव को हमेशा रहता था कि जो श्रोता उसके सामने सुने वो पुस्तक सामने रखे, तो इसलिए गुरुदेव किसी को पूछते हैं यहाँ लास्ट सेंटेंस में कि पुस्तक ली है या नहीं, क्योंकि शास्त्र सामने होवे तो आचार्यों के शब्द जो गुरुदेव यहाँ से समझाते थे वो सबको पता लगे कि ये आचार्य के शब्द है।
अनुमति तमें ले लेते नेक्स्ट पैराग्राफ।
ओके, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, यह व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय है। ऐसे किसे अंतरात्मा को यहाँ परमात्मा की बात नहीं है, बहिरात्मा की बात नहीं है, अंतरात्मा सम्यक दृष्टि, फिर चौथे पांचवें छठवें हो सातवें शुद्ध उपयोग है, ऐसे अंतरात्मा को शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति और अनुभव वाले को अर्थात चौथे पांचवें छठे गुण स्थान वाले को दूसरे जीव राग को पुण्य को धर्म मानने वाले ऐसे बहिरात्मा को सम्यक दृष्टि अंतरात्मा बहिरात्मा के रूप में व्यवहार संकेत में स्वीकार करता है, और चौथे गुणस्थान वाला व्रत रहित हो अविरत हो तो वे अंतरात्मा चौथे पांचवें छठवें वाले उसे मोक्ष मार्ग में शिव मार्ग में चलता है ऐसा व्यवहार संस्कृत में स्वीकार करते हैं। समझ में आया उसकी बात चलती है या नहीं, वेद की बात चलती है। यहाँ वो जस्ट चौथे पांचवें गुण स्थान वाले वो सब वैसे तो शिव मार्ग में मोक्ष मार्ग में चलते हैं और व्यवहार से ये वैसा बोलते हैं कि ये छठवें में है पांचवें गुण स्थान में है। और आप लोग बताइए इसमें और कुछ ऐड करना है। कि ये तीन भेद वैसे व्यवहार से बोले जाते हैं बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा। क्योंकि यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ सेकंड सेंटेंस में गुरुदेव ने बोला ना कि यहाँ परमात्मा की बात नहीं है, तो क्योंकि परमात्मा की बात तो परमात्मा तो शुद्ध चैतन्य जो है उसमें तो गुणस्थान वगैरह होते ही नहीं है ना, जो शुद्ध जीव है उसमें गुणस्थान नहीं है। तो यहाँ जैसे हम बोलते कि यह बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा वगैरह वो तो व्यवहार का व्यवहार से बोले जाते हैं।
तो यहाँ बेसिकली अंतरात्मा की बात ली है राइट, परमात्मा की बात नहीं है और ना बहिरात्मा की बात है।
हाँ, क्योंकि हाँ नहीं एटले आ बदा सात्व शुद्ध उपयोग ने बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा ये तो बदा लाइक व्यवहार ना भेद बदा छे ने, એટલે પરમાત્મા કી બાત નહીં હૈ। પરમાત્મા એટલે કે પરમાત્મા અહીંયા આગળ કે જે શુદ્ધ પરમાત્મા થઈ જાય કે જે શુદ્ધ જીવ છે એની વાત નથી, કેમકે એમાં ભેદ કે વ્યવહાર ના હોય ને તો ગુણસ્થાન ગુણસ્થાનાતીત હોય ને। હા, ઓર યહાં પરમાત્મા કી બાત નહીં હૈ બહિરાત્મા કી બાત નહીં હૈ, આપકી બાત બરાબર હૈ के अंतरात्मा की बात है यहाँ, क्योंकि ये अंतरात्मा के भेद बताए ना चौथे पांचवें छठवें सातवें। चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान वाले को
किसी को कुछ अपने विचार रखने हो तो
वो ये बहिरात्मा की बात इसलिए नहीं है क्योंकि बहिरात्मा में सम्यक दर्शन नहीं आता, और ये व्यवहार सम्यक दर्शन के बारे में बात है इसलिए बोला है कि ये अंतरात्मा की बात है और बहिरात्मा की नहीं है।
यहाँ अंतरात्मा के पुस्तकों के भेद की भेद की बात चलती है। चौथे गुरु स्थान व्रत रहे अविरति हो तो वे अंतरात्मा चौथे पांचवें छठवे वाले सारे मोक्ष मार्ग में ही
है। चलिए मैं और एक पैराग्राफ हम कर लेते हैं, मैं ले लेता हूँ उस पैराग्राफ। अभेद में तो आत्मा की दृष्टि अनुभव हुआ निश्चय वह अंतरात्मा है, उसे फिर किसी को तीन कषाय रहे हो, किसी को दो रहे हो, किसी को एक रहा हो, परंतु है वह अंतरात्मा। वह अंतरात्मा सामने वाले जीव तत्व के तीन प्रकार स्वीकारता है। वह व्यवहार में जीव तत्व की श्रद्धा करता है ना, किसकी करता है? अंतरात्मा निश्चय सम्यक दृष्टि जीव उसके व्यवहार में जीव के तीन प्रकार का स्वीकार करता है। यहाँ प्रयोजन भूत की ही बात है, दूसरे अमुक भेद और अमुक भेद की बात यहाँ नहीं है। तो यहाँ अंतरात्मा क्या है वो बताया है कि आत्मा की दृष्टि जब अनुभव होता है तो वो निश्चय है, वो अंतरात्मा है। तो इसमें चाहे किसी के तीन कषाय रह गई हो, दो रह गई हो या एक रह गई हो, पर वो अंतरात्मा है। जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसके बाद की बात हुई है। और वो अंतरात्मा अपने सामने वाले मतलब जीव तत्व मतलब तीनों प्रकार को स्वीकार करता है। तीन प्रकार मतलब यहाँ वही आया ना, अंतरात्मा बाहिरात्मा और परमात्मा।
हाँ
तत्व में जीव वो अंतरात्मा सामने वाले जीव तत्व के तीन प्रकार स्वीकारता है, व्यवहार में जीव तत्व की श्रद्धा करता है। राइट, तो अंतरात्मा मतलब निश्चय सम्यक दृष्टि जीव है और वो अपने उसके व्यवहार में जीव के तीन प्रकार को वो स्वीकार करता है। जो ऊपर आया हुआ है कि तो जैसे पांचवे छठे गुणस्थान वाले चौथे गुणस्थान वाले को मोक्ष मार्गी अभिनव ऐसा स्वीकार करते हैं, तो उसी की बात हो रही है यहाँ। यहाँ निश्चय सम्यक दृष्टि जीव मतलब अंतरात्मा की बात हो रही है कि अनुभव हो चुका है तो इसमें आके ये जो प्रयोजन भूत है अपने तीनों आत्मा का अनुभव करना, अपने आत्मा में लीन रहना, तो वो प्रयोजन भूत है तो उसकी बात हो रही है ऐसा यहाँ बताया है। ऐसा मेरी समझ में आ रहा है, किसी को और कुछ ऐड करना हो या समीर रिजुल यू आर एबल टू फॉलो राइट?
नो वी आर नॉट, आई एम नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग इट।
ओके मानस कैन यू एक्सप्लेन समीर रिजुल इन इंग्लिश? Whatever we did, you know, in these three paragraphs on what they are talking about.
Yeah. But what did you guys understand? Or you didn't understand?
No, we should like the first three paragraphs.
Okay. So after that, it says that so there's three prakar of a jeev, which is bahiratma, antaratma, and paramatma, and he says that this topic that we've been talking about so far is the vivar of antaratma, it's not Paramatma and it's not Bhairatma, because you're talking about Samyadarshanasta, which is a talk of Antaratma. But like, this vivar, because it's, you're talking about it when they're not in their soul, they're thinking about things outside the soul. And then just that, it doesn't matter that if it's, they have 15 kashayas, they have 3 kashayas left, 2 kashayas, or 1 kashayas left, they're all still antaratma, and that the nishchay, and that basically that they're all, no matter what, they're all following Moksha Marga, and that's the nishchay of it.
Do you understand that,
Samir
Rijul? Yeah. So basically what has happened, you know, come in this paragraph, what they are trying to explain is that, see, like, you know, right, Anubhavji ne aapko sikhaya tha ki Bhairatma, Antaratma, Paramatma kya hai, right? So यहाँ के you know what they are saying is that you know the samyakdasti jiv, right, who is in you know fifth gunasthan or in sixth gunasthan, right? So you know based on the you know gunasthan stages, right, samyakdasti jiv who is in fourth gunasthan, so one who is in fifth gunasthan, he accepts the fact that you know the samyakdasti jiv who is in fourth gunasthan is a moksha margi. Okay, irrespective of the fact that the fourth gunasthan, you know, samyakdasti jiv may not be doing any vrat, or he might be just, you know, living a household life like how we are all living, right? But in spite of that fact, since, you know, he has got, he has achieved, you know, samyak darshan, the gunasthans, you know, fifth gunasthan samyakdasti jiv and sixth gunasthan samyakdasti jiv, they accept that fact that he is also a moksha margi jiv, right? Because he has already attained samyak darshan. Understood, Samir Rijul?
Yes.
Yeah. So that is what the importance of that, you know, gunasthan stages is, you know, they are talking about. And, you know, given the fact that he, you know, the jiv has already attained samyak darshan, whether he is doing any vrat or not now, and he is just, you know, busy in his, you know, household day-to-day life, we are, you know, you see him, he will be like, you know, functioning normally like how, you know, we normally function, right? That's how it looks like. But, you know, since he has already attained samyak darshan, you know, the samyakdasti jiv accepts that fact that he is a moksha margi jiv. And I think the next, you know, few paragraphs, Manas explained you very clearly that, you know, when you talk about, you know, antaratma, that basically, you know, once you attain samyak darshan, then, you know, he accepts all these three types of, you know, jiva, right? Like whether it's antaratma, bharatma, he accepts, you know, that fact. So, you see, you know, baat aayi hui hai. I think what, I mean, in next class, you know, Anubhavji will again kind of, you know, go through this paragraph and explain us in much, you know, detail. Probably that will give us more clarity. If at all there are any questions, please note it down. And we can get it clarified from Anubhavji next week. At the same time, Anubhavji said that, you know, in the next class, he will kind of, you know, take this up again and try to, you know, see like what we all have understood by reading this, you know, 3-4 paragraphs. I think यहाँ you know अपना time भी हो रहा है. I think यहाँ रोकते हैं आज. तो जिनवानी स्तुति ले लोगे? समीर, can you take जिनवानी स्तुति?
जवानी के ज्ञान से सुचलो का लोक तो वाणी मा सकर्म सजत हूँ धोक.